अब अगली आयतों में जरा पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत बात। इन्ना लिल मुत्तकीन इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक मुत्तकियों के लिए उनके रब के पास नेमत भरी जन्नतें हैं। बस खुद सोचो क्या नेमतें हैं, जैसे अमल वैसी जन्नत। सवाल उठाया, अफा नजलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम कर देंगे मुस्लिमों को मुजरिमों जैसा, क्या मुजरिमों जैसा मुस्लिमों का इंजाम करेंगे। मालकुम, क्या हो गया तुमको, व्हाट हैपेंड, कैफ तहकुमून, कैसे फैसले करते हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम मोमिनों यानी मुस्लिमों को अल्लाह की बात मानने वालों को मुजरिमों जैसा करार देते हो, ये तो कभी नहीं हो सकता, अल्लाह ताला तो कभी ऐसा नहीं करते, ये तो गलत बात है। देखिए यही बात हम आगे जाके सूरत हश्र में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कि ला यस्तवी असहाबुल जन्नार असहाबुन नार। तो क्या पता चला कि दो मुख्तलिफ किरदार हैं दुनिया में, जो सोच और जो तरीका कार है ना वही आखिरत में सामने आ जाएगा। दुनिया में क्या एक मुजरिम क्रिमिनल और एक नेक शख्स बराबर है? एक शख्स जो घर से निकलता है और मस्जिद में जाता है बेजरर, अपनी इबादत से काम रखने वाला, एक शख्स गन हाथ में लेकर बाहर जाता है और गोलियां बरसाता है, क्या दोनों बराबर है? क्या उस मुल्क की गवर्नमेंट दोनों के साथ एक मामला करेगी, पुलिस दोनों के साथ एक ही मामला करेगी? तो बस आखिरत में क्या अल्लाह ने ऐसा कोई जुल्म करना है? माजरत के साथ कहूंगी कि कुछ लोग अल्लाह से इसी नाइंसाफी की उम्मीद में जी रहे हैं कि कल जाके सब एक बराबर होंगे, सबको अल्लाह ने जन्नत दे देनी है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह उसको आग में डाले उसको डाले। तो याद रखिए अल्लाह का नाम अलगनी भी है, बेपरवाह समद भी है, ही डोंट केयर। जब अल्लाह को किसी पर रहम नहीं आता तो नहीं आता। अब देखिए पैदा होते बच्चे से अल्लाह माँ छीन लेता है ना, हम हो तो कभी छीने, हाँ कहीं बच्चा जरा बड़ा हो जाए, अच्छा दूध पी ले, अच्छा पाल ले, अल्लाह ले जाते, उस वक्त अल्लाह समद होता है। इसी तरह अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम में डालकर बेनियाज हो जाएगा, तो अल्लाह कहते डोंट से दिस, आप लोग ये बिल्कुल ना कहना कि नेकी करो ना करो, क्या पता अल्लाह ने किसको बख्श देना है, क्यों नहीं पता, सब पता है, अल्लाह ने सब कुछ बताया हुआ है। और तुम अगर ये कहते हो कि सब ने एक ही जगह जाना है, तो अम लकुम किताबुन फीही तदरुसुन, शो मी द रेफरेंस, है कोई किताब जिसमें से तुम ये पढ़ते पढ़ाते हो, चलो इन 29 पारों में कहां तुमने ये पढ़ा है कि जैसा मर्जी जियो आखिर में सब जन्नत में। इन्ना लकुम फीही लमा तखय्यरून, जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए जरूर वही कुछ है जो तुम पसंद करोगे, है कोई किताब की कोई आयत ऐसी जिसमें ये लिख दिया हो कि तुम्हें जन्नत चाहिए तो जन्नत मिल जाएगी, जहन्नम चाहिए तो जहन्नम, अल्लाह वहां जाके चूज कराएगा, मेन्यू कार्ड तुम्हारे हाथ में देगा कि बताओ वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ऐसी कोई बात है तो शो अस, दिखा दो हमें। अम लकुम ईमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा, या फिर कोई हमारे जिम्मे कस्में है तुम्हारे पास पहुंची भी क्यामत के दिन तक, क्या कि इन्ना लकुम लमा तहकुमून, कि तुम्हारे लिए वही है जिसका तुम हुक्म दोगे। यानी ये भी अंदाज देखिए, जरा मुश्किल सा तर्जमा है इसका। अल्लाह ताला कहते हैं या फिर तुम्हारे लिए क्यामत के रोज तक हम पर कोई अहद और पैमान है, यानी हमने तुमसे कोई वादा किया हुआ है कि तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें जरूर मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं? आपने पढ़ा कहीं कुरान में कि अल्लाह ने हमसे कोई वादा ली हुआ कि क्यामत के दिन खड़े हो जाना और जो हुक्म करते जाओगे तुम्हें वो मिलता जाएगा? अगर ऐसा कोई है तो फिर बताओ, सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, फिर इनसे सवाल करो इसका कोई जामिन है, कोई गवाह लेकर आओ, कोई इस बात की जमानत दे दे कि जो ये कहे कि हाँ अल्लाह ने तुमसे ये वादा किया है कि तुम क्यामत के दिन जो मांगोगे मिलेगा, और ना मिले तो हम लहुम शुरकाओ फल या तो भी शुरकाई, क्या उनके कोई शरीक हैं तो ले आए अपने शरीकों को, यानी कोई पार्टनर कोई ऐसा जो अल्लाह ताला को ये वादा याद दिला दे, इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। क्या पता चला, अल्लाह की इस किताब में तो ऐसा कोई वादा नहीं है कि जो चाहो करो जैसा चाहो जियो और मरते ही सब बराबर हो जाओ, है कोई तो ले आओ कोई जईम। ये जो लफ्ज है ना जईम, अरब लोग जईम उस शख्स को कहते थे जो कफील हो, जामिन हो, या किसी कौम की तरफ से बोलने वाला यानी वकालत करने वाला, कोई आगे बढ़कर ये दावा कर सकता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई अहद पैमान लिया, यानी कोई थर्ड पार्टी ही ले आओ कि जो तुम्हारे हक में अल्लाह से जाके बहस करे कि अल्लाह ताला आपने इनको जन्नत क्यों नहीं दी। असल बात यह है कि ये तुम्हारी खुशफहमी है। देखिए जो जितना अमल करता है ना वो उतना डरता है, और जो जितना बेअमल होता है ना वो उतनी अल्लाह की कुदरत का इजहार करता है। लिखिए जरा एक जुमला, जो अमल करता है ना वो अल्लाह के अल हकम और अल अदल होने का यकीन रखता है। तभी तो आप भी पढ़ रहे हैं ना, नमाज पढ़ी आपने क्योंकि आपको पता अल्लाह अल हकम है और अल अदल है। पढ़ूंगी नमाज, अल्लाह मेरे से जुल्म नहीं करेगा। इसके बरक्स जो बेअमल होता है ना, वो अल्लाह की तरफ से किसी मोजज़े का इंतजार करता है। देखना बस, मैंने तो मोजज़ाना तौर पे जन्नत में पहुंच जाना है, बाकी पहुंचे ना पहुंचे, अल्लाह कहते हैं गलत, आओ देखो उस दिन हाल क्या होगा। अब अगली आयतों को जरा सामने रखिए, और बेबसी की तस्वीर है। यौम युक्शफु अन साकिन व युदाउन इला सुजूद वला यस्ततीउन। जिस रोज वो सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा न कर सकेंगे। खाशियत नबसारुहुम, इनकी निगाहें नीची होंगी। तरहकुहुम जिल्ला, जिल्लत इन पर छा रही होगी। वक़द कानू युदाउना इला सुजूदी वहुम सालिमून, जब ये सही सालम थे तो इस वक्त इनको सजदे के लिए बुलाया जाता था और इनकार ही करते रहे। ये कौन सा वक्त होगा? रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन जब अल्लाह सुबहान तआला मैदान हशर में नजूल फरमाएंगे और अल्लाह ताला को आता देखकर हर बंदा सजदे में गिरना चाहेगा। ये ऐसी ना जैसे किसी बड़े को या जिसका हमारे दिल में रोब हो या जिससे मोहब्बत करें उसको आता देखकर हम एकदम अनकॉन्शियसली उठ जाते हैं। आइए आइए बैठिए, क्या हाल है, ठीक है, कैसे आए? अब ये तो इंसान है ना, अल्लाह के सामने जब जाएंगे। और ये यौम अयुक शफन साख, पिंडली कौन सी कैसी है, छोड़ दीजिए इसको, ये मुतशबिहात में से। कोई कहता है ये मुहावरा है, सख्त मुश्किल पड़ती है तो उसकी बात है। इब्ने अब्बास भी यही बात कहते हैं। बास कहते हैं कि पर्दा उठाना हकायक से, सारी हकीकतें जिससे बेनकाब होंगी, लोगों के अमाल खुल के सामने आएंगे और उस दिन लोगों के सामने आ जाएगी वो जात जिसका इनकार करते थे। अब जब लोग अल्लाह को देखेंगे आता तो सब सजदे करने चाहेंगे। जो लोग दुनिया में इबादत गुजारते वो तो फौरन सजदों में चले जाएंगे, और जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह के आगे सरे न्याज झुकाने से इनकार किया उनकी कमरें तख्ते की बन जाएंगी, झुक नहीं सकेंगे और शर्मिंदगी और पशेमानी होगी। ये है सजदे की दौलत। पहले तो दुआ करें कि अल्लाह जिंदगी के आखिरी दिन तक झुक के सजदा करने की तौफीक देना। आजकल अल्लाह रहम करे जवान जवान लोग भी सजदा झुक के नहीं कर पाते, दुख होता है, क्योंकि क्यामत के दिन जो कैफियत होनी थी कमरों के रास्ता होने की वो दुनिया में हो जाती है। दूसरी बात आप देखिए कि नॉन मुस्लिम लोग जूं जूं उम्र में आगे जाते हैं ना, उनकी बॉडियां स्टिफ होने लगती हैं, सख्त, और जो ईमान वाले 5 वक्त के नमाजी हैं वो आखिरी दिन तक भी झुके रहते हैं। आप आजमा के देखें, दुनिया में भी कमर तख्ता हो जाती है जो सजदा नहीं करते। और अब तो आप देखिए डॉक्टर्स ने और फिजियोथेरेपिस्ट जो है उन्होंने कितना कुछ बता दिया कि कमर झुकाएं, और जब सजदे में हम जाते हैं आपको पता है कि हमारी बैकबोन रिलीफ हो जाती है। हम जिस कैफियत में खड़े हैं, जो भी हमारी बैकबोन पे बोझ होता है ना, जब आप सजदे में जाते इमेजिन करें तो कमर का मोहरा ऊपर आ जाता है और सारी बॉडी का बोझ नीचे जाता है। आप ये एक्टिविटी करके देखें, सिर्फ सेहत के नाते से भी आप लंबा सजदा करें तो जब आप उठेंगे ना तो आपको अपनी कमर के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन फील होगी। अल्लाह ने जो इबादत हमें दी है उसके अंदर हिकमत है, और उस दिन ये सारे मामले देखकर लोगों को यकीन आ जाएगा कि आज वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की बात मानी। और मैं ऐसी किसी शख्सियत को जानती हूँ कि जब आखिरी दौर में कमर की बीमारी में मुबतला हुए तो झुक नहीं सकते थे, लेटते ही लेटना है, करवट भी नहीं लेनी, यही आयत पढ़ते थे कि हमारा तो ये हाल है कि जब सही सालम थे तो हमारे पास वक्त नहीं था नमाजों का, और आज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ही नहीं सकते। कई कई साल तक लोग बिस्तरों में एड़ियां रगड़ के जाते हैं और अल्लाह माफ करे मैं देखती हूँ कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह फरमाते फजरनी वमन युकज्जिबु बिहाज़ल हदीस, बस नबी तुम इस कलाम के झुटलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो, मुझे और इनको छोड़ दो, तुम बीच में से निकल जाओ। कितनी सख्त थी इसमें, यानी तुम्हें जो झुटलाते थे असल में वो मुझे झुटलाते थे, मैं निपटूंगा। سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, हम ऐसे तरीके से बतदरीज तबाही की तरफ इनको ले जाएंगे कि इनको खबर भी नहीं होगी। ये दुनिया की दौड़ धूप जिसको ये समझते हैं कि हमारे फायदे की है, ये असल में इनके लिए क्या है, इस्तेदराज, लम्हा लम्हा पकड़ना। और एक पकड़ होती है पता चलता है, जब दुनियादार की पकड़ होती है उसको तो पता भी नहीं चलता। और मैं इनकी रस्सी दराज कर रहा हूं, इमला से लंबा करना। इन नकैदी मतीन, मेरी चाल बड़ी जबरदस्त है, यानी मेरा तरीका कार, मेरी पकड़ का ढब बड़ा निराला है। अम तसलुहुम अजरन, क्या तुम इनसे कोई अजर तलब कर रहे थे, यानी ये दावत तबलीग का, दीन की बात बताने का, क्या तुम इनसे कोई अजर मांगते थे। फहुम मिन मगरमिन मुसकलून, जिस चट्टी के बोझ तले वो दबे जा रहे थे। मगरम किसको कहते हैं, टैक्स को, तावान, चट्टी पड़ना किसी को, जैसे आप कहते हैं फाइन हो जाना, कि क्या आप इनसे ये दीन की बातें कहने का कुछ मांग रहे हैं जिसको वो दे नहीं पा रहे और इसलिए भिदक रहे। ऐसा तो नहीं था, अल्लाह के नबी ने कभी किसी से नहीं मांगा अपनी जात के लिए। चलो अमिंदा हूं, तो क्या इनके पास है अलगैब, गैब का इल्म, फहुम यकतुबून, जिसे ये लिख रहे हो, यानी ये बात तो नहीं है, तो क्या गैब की कोई बात है इनके पास जिससे पता चले कि ये सच्चा नबी नहीं है, ये खुद ही बन के आ गया, ये अपनी बातें हैं, यानी इनके पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज ही नहीं है। फसबिर लि हुक्म रब्बिक, आखिरी आयत है, बस आप अपने रब के हुक्म के लिए सब्र कीजिए। वला तकुन कसाहिबिल हूत, और मत हो जाइए मछली वालों की तरह, मछली वाले यानी यूनुस की तरह। इस नादा वहुवा मकदूम, जबकि इसने पुकारा था और वो गम से भरा हुआ था, वही वाकया मछली के पेट में जाने का। लौला अंतदारकहु नेमतुम मिर रब्बिही, अगर इसके रब की मेहरबानी इसके शामिल हाल न होती। लनुबिद बिल आराई वहुवा मज़मूम, तो वो मज़मूम होकर चटियल मैदान में फेंक दिया जाता। लेकिन अल्लाह से थोड़ी जाया करता अपने बंदों को। फजतबाहु रब्बुहु फजालहु मिनस सालिहीन, बस इसके रब ने इसको बरगजीदा किया, चुन लिया और इसे सालेह बंदों में शामिल कर लिया। वहीं यकादुल लसीन कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम, जब ये काफिर लोग कलामे नसीहत सुनते हैं यानी कुरान, लम्मा समियु जिक्र, तो क्या करते हैं, लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम, तुम्हें ऐसी नजरों से देखते हैं कि तुम्हारे कदम ही पछाड़ दे, तुम्हारे कदम उखाड़ दे। वयकूलूना इन्नहु लमजनून, और कहते हैं ये तो जरूर दीवाना है। नहीं, गलत कहते हैं। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, हालांकि ये कुरान तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है। अब इन सारी आयतों का रब देखिएगा। सूरत अंबिया में हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि हजरत यूनस मछली के पेट में क्यों गए और वहां जाकर आपने क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत नंबर 87 और 88 में पढ़ा था। यहां एकदम उनका वाकया पेश क्यों किया गया। हजरत यूनस की खता क्या थी कि जल्दी कर लिया, अभी हिजरत का हुक्म नहीं था तो हिजरत कर ली। अल्लाह के नबी को इशारतन बताया जा रहा है कि जिस तरह हजरत यूनुस फौरन खुद ही बगैर हुक्म के चले गए अपने शहर को छोड़कर, कहीं आप मक्का छोड़ के कहीं निकल ना जाए। देखिए ये कितनी बड़ी सख्ती है, हम अपनी जिंदगी पे लें जरा सी कोई तकलीफ, हम कहते हम छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं, टिकट कटाते हैं, उस मुल्क से चले जाते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं है ना, अगर हम जाना चाहें, हमारे ऊपर कोई इखलाकी या मजहबी पाबंदी तो नहीं है ना, नबियों पर पाबंदी होती थी। इस मुश्किल में रहना है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। दूसरी बात आप देखिए कि सूरत साफात की आयात जो थी 142 से 146, अगर उनको भी साथ मिलाएं, तो हजरत यूनस मछली के पेट में डाले गए, मलामत में मुबतला थे, वहां उन्होंने अल्लाह की तस्बीह की, ला इलाहा इल्ला अंता, अपने कसूर का इजहार किया, तो मछली के पेट से जब निकाले गए तो किस हालत में थे, सकीम या मुलीम, तो वहां सकीम, चटियल जमीन पे फेंका हुआ। अल्लाह ने अपनी रहमत से वहां एक बेलदार दरख्त उगाया, उसके पत्तों के नीचे साया भी हुआ और उसके फल से भूख भी खत्म हुई, प्यास भी हुई। सुन चुके हैं ना, अल्लाह यहां ये बता रहा है कि जब किसी बंदे को अल्लाह के रास्ते में मुश्किल आए और वो अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर है, तो अल्लाह उसका कुछ ना कुछ दरमा भी कर देता, कुछ तरियाक आ जाता, आपकी मदद भी होगी, आपकी ये मुश्किलात कटेंगी, थोड़ा सा इंतजार कर ले। اور یہ جو آخر میں بات ہے نا کہ آپ کو نظروں سے پھسلاتے ہیں, تو کفار مکہ کے غیظ و غضب کی کیفیت ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 73 سے 77 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ آپ کو یوں دیکھتے تھے کہ کھا جائیں. انہوں نے جب سارے ہی ہتھیار استعمال کر لیے نا آپ سے روکنے کے, لوگوں کو اور آپ کو تنگ کرنے کے, تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا. پھر انہوں نے ایک اخلاقی طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ پریشرائز کرنے کے لیے کیا کیا. ان کے لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی کے پاس آتے, جیسے آپ کی محفلیں تھیں اوپن تھی, اور آ کے آپ کو گھڑنا شروع کرتے تھے, دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. اب آپ اپنے اوپر لیں کہ جب آپ کو کوئی گھڑنے لگ جائیں, کسی بھی جگہ آپ ہو, شادی میں ہے یا آپ ایئرپورٹ میں ہیں یا کچھ ہیں, امیجن کریں آپ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہیں, جہاز کے انتظار میں کرسی پہ بیٹھی ہیں, اب ایک شخص آ رہا ہے آپ کو یوں دیکھ رہا ہے, پھر وہ آگے چلتے چلتے آپ کو یوں مڑ کے دیکھ رہا ہے, پھر تھوڑی دور جا کے وہ واپس پلٹتا آپ کو دیکھتا ہے, آپ کیا سوچیں گے؟ ایون محفل میں اگر ایک شخص آپ کو گھرنے لگ جائے کسی جگہ, پریشان ہوں گے, آپ کہیں گے خیریت تو ہے. اور یاد رکھیے کہ نظروں سے اثر ہوتا ہے, یہاں سے نظر بد کا اشارہ بھی لوگوں نے لیا. بعض لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں نظر بد کے لیے, مجھے کوئی اس کی روایت نہیں ملتی, اس لیے نہ میں اچھا نہ کچھ برا کہوں گی, لیکن اگر کسی کو کسی کی نظر بد کا خطرہ ہو تو اس کے لیے حدیث کا وہی طریقہ کار جو آپ کو جادو کے زور سیمینار میں بھی بتایا تھا کہ اس کے وضو سے جو پانی بچے اس سے غسل کرائے تو اثر ختم ہوتا ہے. یعنی جس کی نظروں سے کچھ نکلا اسی کے اثر کو اس پہ پلٹا دو. غسل کی بھی بات آتی ہے, وضو کے پانی کی بھی آتی ہے, اور اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے صبح و شام کی بھی دعائیں پڑھیں, اور اسی طرح سے کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہ ہم عموماً کوئی اچھی چیز لگے نا ہم اس کو گھورنا اور تاڑنا شروع کر دیتے ہیں, پھر کوشچن آنے لگتے ہیں دماغ میں. کسی کا بچہ, کسی کی ماں بہن دلہن بہو بیٹی, کوئی ظاہری چیز, کسی کی گاڑی, کسی کا گھر, کسی کی عادت, کسی کا چلنا پھرنا, کسی کی یعنی آپ کہہ لیجئے کہ پھرتی, کچھ بھی اچھا لگے تو ماشاء اللہ کہ اس سے اگلے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی اور آپ کو بھی نہیں ہوگی. جس اللہ نے اس کو دیا وہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے, اس لیے ضرورت ہے کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کو بھی شر کا ذریعہ نہ بنائے. تو یہ تھی صورت کہ جس نے ہمیں اللہ کے نبی کے غم ہرے کروا دیے اور ہم سب کو بھی بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں لوگ نظروں تک سے تکلیف دیتے ہیں, اور پزل بھی کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کے نبی کو دیکھو تاکہ یہ پزل ہوں, اگر کمزور ہیں کچی شخصیت کے ہیں تو پھر یہ اپنی بات تو ٹھیک کر ہی نہیں سکیں گے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جب نئی نئی دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کی نظروں کو فوکس نہیں کر سکتے, بہت زیادہ لوگ ہیں تو جی ہم فوکس نہیں کر سکتے, رائٹ. تو یہ ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہلکا کر دیں پیچھے سے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. ایک روایت بخاری اور مسلم کی سن لیں, یہ جو کمروں کے تختہ بننے کی بات تھی, ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے سنا, فرمایا کرتے تھے ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا, بس ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت سجدے میں گر پڑے گی. ہاں دنیا میں جو لوگ دکھاوے سناوے کے لیے سجدے کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے, لیکن ان کی کمر تختے کی ہو جائے گی, یعنی ان سے سجدے کے لیے جھکا نہیں جائے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو دکھاوے کے سجدوں سے ہم نے بچنا ان شاء اللہ تعالی. بات پوری ہو گئی ہے, اب آپ لوگ کو شیئر کریں کوئی سوال کوئی بھی بات. ماشاء اللہ جب کسی
چیز کے لیے کہتے ہیں تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہ اٹس اے ذکر, اٹس ناٹ اے دعا. اور اگر آپ نے دعا کرنی نظر بد سے بچنے کے لیے تو اللہم بارک لہا, اللہم بارک لہا لہا فینا.
جی دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ تو ہم کہتے ہیں جو چاہا اللہ نے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کہتے ہیں بارک اللہ یا بارک اللہ تو آپ کہتے ہیں اللہ آپ کو اس میں برکت دے, دونوں باتیں ٹھیک ہیں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہیں تو پھر نظر نہیں لگتی. تو یعنی آپ کو اگر عربی آتی ہے تو آپ ساتھ بارک اللہ بھی ضرور کہہ دیں, لیکن ماشاء اللہ تو ضرور کہیں, ٹھیک ہے. اور دعا ہی کی نیت میں کریں. اور اس میں آپ دیکھیں نا عقیدے کی بھی تو اصلاح ہے نا, کہ اس کی کیا خوبی ہے جو اللہ نے چاہا اس کے پاس ہے, تو اس سے فوراً آپ اس کے سحر سے بھی نکل آئیں گے اور فوراً رجوع ہوگا کہ اچھا پھر میں بھی اس اللہ سے مانگ لیتی ہوں, ٹھیک ہے جی. اور جی اچھے اخلاق کے لیے اندر سے میں ختم کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. اور
کسی کی اچھی چیزیں دیکھو تو اس پہ ماشاء اللہ ضرور.
ماشاء اللہ صحیح. قلم بننا ہے یہ آپ نے سیکھ, کتنے لوگوں نے قلم بننے کا ارادہ کیا ہے؟ الحمدللہ, بس اللہ آپ کو ضائع نہ کرے. میری تو آپ کے لیے دن رات یہی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو بھی ضائع نہ کرے, آپ کی انک نہ سوکھے اور آپ پڑی نہ رہ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی اپنے راستے میں کھڑا کر دے. قلم کی خوبیاں لینی ہیں انشاءاللہ اپنے اندر, اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے اور اپنے سجدوں کو بہتر کرنا. اچھا اس سے اگر یہ چھوٹی سی بھی عمل کی ہم سب بات لیں نا, دن میں کوئی بھی وقت فارغ دیکھ کر, ایک تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت بھی ہمارے ذہن پہ بہت سارے اور کام ہوتے ہیں, کوئی فارغ ٹائم دیکھ کے سجدے کی کیفیت میں چلی جائیں, جیسے وہ بچے نہیں زمین پہ سر ڈال کے میمنی سے بن جاتے ہیں, بن کے دیکھیں اور اس میں پھر جو باتیں کرنی ہیں اللہ سے کریں. انشاءاللہ تعالی تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.